وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. اگر اے نبی یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ آپ سے پہلے بھی یعنی قبلہم ان سے پہلے ان سے پہلے قومیں یعنی قریش سے پہلے مشرکین مکہ سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا, قوم عاد نے بھی جھٹلایا, قوم سمود نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی کہ اگر یہ ایسا آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا تو آپ سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے, ان قوم سے پہلے بھی مشرکین مکہ سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. تو یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا, یہ ان کی عادت ہی ہے, یہ لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. اب ہمیں اس چیز سے اتنی بڑی ہمیں بھی تسلی ملتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دیں اور وہ آگے سے ریجیکٹ کرتا ہے اور وہ آگے سے منہ بناتا ہے اور وہ آگے سے باتیں کرتا ہے تو کبھی ڈس ہارٹ نہ ہو, ہمیشہ یہ سوچیں کہ دیکھو میرے سے پہلے تو کئی پیغمبر آئے ان کو جھٹلایا گیا, تو میری بات کو جھٹلا بھی دیا کسی نے تو کیا ایسی بات ہو گئی. وہ پیغمبر تو دیکھو انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے لگا دی پھر بھی لوگ نہیں مانے تھے, تو مجھے دو چار چھ لوگوں نے دس لوگوں نے بھی منع کر دیا یا کہہ دیا یا کچھ آگے سے نیگیٹو ریئیکشن دیا یا کوئی مذاق اڑا دیا یا برا منہ بنا دیا, تو کوئی بات نہیں, پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوتا رہا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ بار بار تسلی دے رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ واقعی آپ کو جو آپ ہرٹ فیل کرتے تھے یا جو آپ کو تکلیف تھی اس چیز کی وہ واقعی جینوئن تھی. ایسے نہیں تھا جیسے آپ مثال کے طور پر کسی کو مثلا کوئی بچے کو ذرا سا کوئی ٹچ کر دے وہ اتنی زور سے رونے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھی کیا تم ایسے چھوٹی سی تو بات ہوئی ہے تم اس طرح سے کر رہے, ایسا نہیں تھا. اس کا مطلب واقعی جینوئن تھی آپ کی تکلیف, اس کا مطلب واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہو رہا تھا اور جو آپ کے سامنے حالات تھے وہ اتنے سویئر تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ مثلا کوئی ایسے ہی کر رہا ہو اتنی بڑی بات بھی نہ ہو اور ایسے ہی بول رہا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ بھئی کیوں آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے یا آپ کو نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کنسول کر رہے ہیں اپنے نبی کو, بار بار اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں. اور پھر دیکھیں وقوم ابراہیم وقوم لوط, اتنے بڑے بڑے پیغمبر آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے, لوط علیہ السلام آئے, ان کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلایا جیسے ان مشرکین مکہ نے جھٹلایا. واصحاب مدین, اور مدین والوں نے جن کی طرف شعیب علیہ السلام آئے تھے. وکذب موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. کس نے جھٹلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ فرعون نے اور اس کی قوم نے. فاملیت للکافرین ثم اخذتهم, تو ہم میں نے ڈھیل دی کافروں کو پھر میں نے پکڑ لیا ان کو. ثم کا میں نے آپ کو بتایا نا, ثم کے اندر تراخی ہوتی ہے, فا کا ترجمہ بھی ہم تو یا پھر کر لیتے ہیں اور ثم کا بھی پھر کر لیتے ہیں, تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ فا اور ثم, فا میں یعنی ایک کام پھر اس کے بعد دوسرے کام. مثلا میں کہوں کہ میں نے کھانا کھایا پھر میں نے پانی پیا, وہ اس کا مطلب ہے کھانا کھایا تو ساتھ ہی میں نے پانی پی لیا. اور ایک میں کہوں کہ میں مثلا کہیں گئی اور پھر میں وہاں سے پھر وہاں گئی پھر میں وہاں سے وہاں گئی, اور اس پھر کے اندر دس دس دن کا فرق ہے کہ میں اس جگہ پہ رہی پھر اس کے بعد پھر میں آگے گئی, اس میں تراخی ہے یعنی ڈیلے ہے. وہ جو ڈیلے والا ہے اس کو بھی پھر ہی ہم کہہ رہے ہیں اردو میں, لیکن وہ عربک میں کیا ہے؟ ثم. اور یہ جو امیجیٹ والا ہے وہ عربک میں کیا ہے؟ ف. ٹھیک ہے, تو فاملیت للکافر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اتنی حرکتوں کے باوجود میں نے ان کو مہلت دی. اور اللہ تعالیٰ مہلت کیوں دیتا ہے؟ مہلت, ٹائم دینا, کسی کو ڈھیل دیے جانا اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہ پلٹ آئے, یہ واپس آ جائے, ہو سکتا ہے اس کو ہوش آ جائے. اور اگر نہیں ہوش آتا تو پھر ताकि इसकी हुज्जत तमाम हो जाए, इसके पास कोई एक्सक्यूज ना रहे कि क़यामत के दिन ये कहे अल्लाह अगर तूने मुझे कुछ टाइम दिया होता तो मैंने तो संभल ही जाना था ना। नहीं, तुम्हें टाइम मिला था, इसका मतलब ये जो टाइम मिलना होता है ना, ये भी इंसान के खिलाफ हुज्जत बन जाता है। इसको कोई अच्छा ना समझे कि मैंने गुनाह किया उसके बाद तो मुझे कोई सजा ही नहीं मिली, देखो कितना मजा आ रहा है, हमें तो कोई पकड़ने वाले नहीं, पता नहीं नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह को शायद भूल ही गया कि हमें पकड़ना है। ऐसी बात नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से ढील होती है। क्राइम हुआ, अब ना कोई तौबा कर रहा है, ना कोई वापस पलट रहा है, ना कोई उस जुर्म को छोड़ रहा है, जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है। तो ये ना समझे कि अल्लाह को भूल गया है, ये ना समझे कि अल्लाह ने पकड़ना नहीं है, बल्कि ढील है, ढील है, ढील है। ढील किस लिए? इसके खिलाफ अच्छी ही तरह पूरा केस तैयार हो जाएगा, अब ये कयामत के दिन कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकेगा। तो ढील अच्छी नहीं होती, ढील इंसान के लिए बहुत खतरनाक है कि वो ही उसके खिलाफ कयामत के दिन हुज्जत बन जाएगी। फकई फकारा नकीर, तो फिर देखो कैसे मेरी सजा हुई, जो इन कौमों के ऊपर फिर जब सजाएं आई, जो पकड़ आई, तो फिर वो कैसी थी। फकई मिन करियतिन अहलकनाह वही अदालिमतुन, कितनी ही बस्तियां हलाक किया हमने उनको इस हाल में कि वो जालिम थी। यानी बहुत, कितनी ही जब आता है ना तो इसका मतलब तो बहुत सारी, बहुत सारी। अच्छा हमें तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बस्तियों का पता चलता है, आद समूद कौम नूह कौम आद, ये कौम इब्राहिम कौम लूत, ये चंद एक बस्तियों का पता चलता है, मगर दुनिया में बहुत सारी बस्तियां तबाह हुई हैं जिनकी दास्तानें भी आज तक किसी को नहीं पता, मगर कुरान कहता है कि बहुत सारी हुई। इसका मतलब काफी काफी टाउन सिटीज खत्म हो गए। क्यों? वही अजालिमतुन, वो जालिम थे। सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क। और गुनाह करते जाना मुसलसल, ये भी जुल्म कहलाता है। कुफर भी जुल्म है, शिर्क भी जुल्म है, और अंधेरों को भी जुल्म कहा जाता है ना। तो यानी ये शिर्क में, कुफर में या गुनाहों में किसी में ऐसे इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से अल्लाह ने उन बस्तियों को हलाक किया इस हाल में, का मतलब क्या? देवर कंटिन्यूसली डूइंग दिस, उस बस्तियां जालिम थी। सब बस्तियों में कॉमन बात क्या थी? जुल्म। ठीक है, इसका मतलब जुल्म लीड्स टू अजाब, जुल्म वजह बनता है अजाब की। किसी के कोई कसूर होते हैं तो तब उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। अब वो एक मैं पढ़ रही थी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा वगैरह के बारे में, हमारे मुल्क में है चूंकि ये तहजीबें, अब वो उसके नीचे खोद खोद के जब चीजें निकाली हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप भी गूगल पे सर्च करके देखिएगा इनकी, सुभान अल्लाह, उन लोगों के घर मौजूद है, उनके बर्तन मौजूद है, उनकी क्या क्या पता चलता है, ये कितने सिविलाइज थे। तो उनकी काफ़ी चीज़ें, उनका सीवरेज सिस्टम है, उनका फ्लां है, और जब ये देखा जाए कि वो क्यों तबाह किए गए, क्या क्या हुआ था उनके साथ, तो ये जब जानने की कोशिश की जाए तो कोई आंसर नहीं है इंसान के पास, कोई आंसर नहीं है किसी के पास, क्योंकि अब वजह क्या हुई थी। वो हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो, इस तरह की चीजें लिखी होती हैं, लेकिन किसी को भी कंफर्म्ड नहीं पता कि क्या हुआ उन लोगों के साथ। कुरान हमें बताता है कि उनका कसूर ये कि वो जुल्म करने वाले थे। अगर वो जुल्म करने के ऊपर पकड़ लिए जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम जुल्म करते रहेंगे तो कभी कोई पकड़ ही नहीं आनी। हो सकता है वैसे ही पकड़ ना आए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं इस उम्मत के लिए, लेकिन आप सोचते हैं कि किसी किस्म की भी नहीं पकड़ आई, ऐसा नहीं होता। वाहिया तालिमतुन फाहिया खाविया आला औरूशी है, तो वो गिरी पड़ी हैं अपनी छतों पर, वह भी रिमतला, और कितने ही कुएं बेकार पड़े हैं, कुओं से पानी निकालने वाला कोई नहीं है। कुएं बे आबाद है, ना कारा हुए में, क्योंकि जो उनके अंदर से पानी निकालने वाले थे वो ही खत्म हो चुके हैं। वकसर मशीद, और कितनी महल हैं, बुलंद महल, मजबूत महल, वो खड़े में हैं लेकिन उनके रहने वाले नहीं हैं। आप देखें फिरौन की जब कौम को डूब गई थी तो उसके महलात वैसे के वैसे ही खड़े रहे। आज तक जो उनके पिरामिड्स हैं वो खड़े में है ना, लोग दुनिया देखने जाती है, वंडर्स में से हैं, लेकिन कहाँ है उनके बनाने वाले? अब ये जो चीज बनाई गई वो इतनी मजबूत है, जो बनाने वाले होंगे कितने मजबूत होंगे, वो कहाँ है अब? उनको तो पूरी अपनी लाइफ भी जीने की मोहलत नहीं मिली। फिर आप ये वो खोदते हैं, इतनी नीचे आबादियां निकलती हैं, समझ नहीं आती ये कहाँ गए लोग, वीरान पड़ी हुई है। सिर्फ आप उन खंडरात को, आप उन चीजों को देखें, चीजें वहां हैं, इंसान नहीं है। ये बातें इंसान को कुछ समझाती नहीं है। इमारतें खड़ी हैं, मकीन नहीं है, किधर है? बहुत बड़ा सबक है। फलम यसीरू फिल अर्द, तुम सैर नहीं करते, चलते फिरते नहीं है जमीन के अंदर, देखते नहीं हो? फतकून लहुम कुलूबु याकिलूना बिहा, होते उनके लिए दिल जो जिससे ये काम लेते, औ आदानु यस्माउना बिहा, या इनके पास कान होते जिससे ये सुनते, यानी जमीन में चल फिर के तो देखो कितने कुएं ऐसे ही पड़े में, कोई नहीं पानी निकालने वाला। समूद की बस्ती के पास से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे सहाबा के साथ, उनके कुएं से पानी निकाला था ना, तो वो वहां के रहने वाले कहाँ थे? फिर महलात हैं, आप देखते हैं समूद के भी, और इनके वो कई पिक्चर्स आती हैं कैसे पहाड़ों के अंदर इन्होंने तराशी में और कैसे वो बनाए में, लेकिन आप वो खुद लोग कहाँ हैं? ये तो पिछली कौमों के हालात देख के इतनी उनके ऊपर रिसर्चे कर रहे होते हैं, कई तो साइंटिस्ट होते ही इस चीज के है ना, वो जब खुदाइयां कर करके उसके अंदर से निकालते रहते हैं, फिर इतनी रिसर्चें होती हैं, फिर इतनी बातें उसमें से अखज की जाती हैं, लेकिन क्या बात है कि तुम्हारे पास इबरत की नजर नहीं है? इबरत की निगाह से भी तो देखो, कोई सबक भी तो लो इनसे। तुम जमीन में चल फिर के नहीं देखते, तुम अकल से काम नहीं लेते, तुम्हारी अकलें नहीं बताती तुम्हें कि ये किधर गए। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप ऐसी सैर करें कि इबरत लें। इनके दिल होते जिनसे ये समझते, या कान होते थे जिनसे ये सुनते। फइन्नहा, तो बेशक ला तामल अबसार, असल में आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल कुलूब लतीफ सुदूर, दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है। अबू जहल की आंखें अंधी नहीं थी, अबू लहब अंधा नहीं था आंखों से, अच्छा भला नजर आता था उसको, लेकिन क्या था, दिल अंधे हो गए थे। दिल जब नसीहत और इबरत से खाली हो जाता है, और कुछ देख के भी चीजों से नसीहत नहीं लेता, हम अपने सामने देखते हैं, हमारे सामने कितने इबरत के निशान आते हैं, हम अपने सामने देखते हैं कि देखो कैसे लोग दुनिया में इतने ऊंचे मकाम पे होते हैं और उसके बाद फिर फकीर हो जाते हैं। हम अपने सामने देखते हैं कैसे एक इंसान महलों में रहता है, और एक इंसान ऐश में है, और एक इंसान उसमें है, और उसके बाद फिर वो 2 गज जमीन के नीचे चला जाता है खाली हाथ, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता उसके पास। हम अपने सामने देखते हैं इबरत की ये निशानियां, फिर भी हमें नहीं समझ आती, फिर भी हम याद नहीं कभी ये रखते कि हमें भी चले जाना है, फिर भी हमें ये नहीं पता चलता कि ये दुनिया में ही ये चीजें साथ छोड़ जाती हैं बाज़ औक़ात, फिर भी हम उन्हीं चीजों के पीछे अपने आप को घुलाते रहते हैं। हम सैरें तो बहुत करते हैं, मगर क्या हमारे पास वो दिल हैं जिनसे हम इबरत लें? क्या वो कान हैं जिनसे हम सुने? देखें, सुनता तो तोता भी है, सुनता तो कुत्ता और बिल्ली भी है, वो भी सुनते हैं, मगर कैसे सुनते हैं? उनको समझ कुछ नहीं आती, उनके दिल तक कोई बात नहीं पहुंचती। तो अगर इंसान भी उसी लेवल पे जाके सुनने लगे, तोते के लेवल पे, बिल्ली के लेवल पे, किसी के लेवल पे भी सुनने लगे इन जानवरों के, तो तो क्या फर्क रह गया इंसान के सुनने में और इनके सुनने में? ये कान है, काश कि इनके कान होते कि वो सुनते इनके साथ, है कि ना? आंखें अंधी नहीं होती, वो इंसान जो इस दुनिया में ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड, जिसे अल्लाह दो ये आंखें, दो प्यारी चीजें ले लेता है, लेकिन उसकी दिल की आंखें खुली होती है ना, उसकी दिल की नजर सही होती है, तो मुजाहिद फरमाते हैं कि उसको फिर उसकी जो आंखें, जिस्म की आंखें हैं, इनका जाना उसको कोई नुकसान नहीं देगा। ठीक है, वो फरमाते मुजाहिद, मुफसिर, मुफसिर कुरान है, फरमाते दो तरह की आंखें हर एक को मिली होती हैं। एक वो जो उस दुनिया के लिए होती हैं, जो जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे मुंह पे लगी हुई हैं, और दूसरी जो दो आंखें वो दिल की आंखें होती हैं, जो दुनिया, ये जो चेहरे पे हमारे लगी हुई है दो आंखें, ये दुनिया को देखने के लिए है, और जो दिल की दो आंखें होती है ना, फरमाया वो आखरत को देखने के लिए है, आखरत को देखने के लिए। अब कईयों की ये जिस्मानी आंखें जो हैं वो नहीं होती, मगर दिल की आंखें सही हैं तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और कई ऐसे हैं उनकी दिल की आंखें अंधी हो चुकी हैं, हाँ जिस्मानी आंखें मौजूद हैं, और आप कितनी इंसानियत ऐसी देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बाहर ड्राइविंग कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनकी जिस्मानी आंखें ठीक हैं मगर दिल की आंखें नहीं हैं, तो ये जिस्मानी आंखें उनको कोई फायदा नहीं देंगी। अल्लाह अकबर, इतनी तरक्कियां कर ली, इतनी रिसर्चें कर ली, इतनी जगह जगह पे खुदाइयां करके चीजें देख ली, म्यूजियम है के भरे हुए म्यूजियम, हम जाते हैं शौक से म्यूजियम विजिट करते हैं जी, मतलब पुराने कदीम आसार के, उसके अंदर पुराने लोगों की कंघियां रखी हुई हैं, उनकी बर्तन रखे हुए, उनकी चीजें रखी हुई, देख दुख के आ जाते हैं बस, उसके बाद क्या, अरे ये म्यूजियम देख लिया हमने, तो क्या देखा उसके अंदर आपने, दिल की आंखों से भी देखा या सिर्फ इन आंखों से देखा? पैसे खर्च करके टिकट लेते हैं और ये बस जाहिर की आंखों से देख के आ जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे भी दिल अंधे हो चुके हैं? और दिल अंधे होने का मतलब क्या होता है, कि जो है ना हक और बातिल को पहचानने की तमीज, तौफीक ही खत्म हो जाए, ये कि क्या सही है और क्या फायदा और क्या नुकसान है और क्या कामयाबी और क्या नाकामी है और दुनिया की हकीकत क्या है और आखिरत क्या है, ये सारी पहचान मिट जाए, इसका मतलब दिल की आंखें अंधी हो गई हैं, दिल के पास आंखें ही नहीं है, कान सुनते ही नहीं है, चाहे कितना भी आप सुन रहे हो। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह ताला इससे महफूज रखना कि दिल की आंखें अंधी हो जाए, तो इसका फिर कोई इलाज नहीं है, सिर्फ यही इलाज है कि फिर इंसान जो है ना अल्लाह के कलाम की तरफ आए और अल्लाह उसको तौफीक बख्शे, उसकी दिल की आंखें खुल जाएं, इसके अलावा नहीं कोई इलाज। और इसीलिए हम बुलाते हैं लोगों के, आओ ये दिल की आंखें जो है ना ये ले लो, ये तुम्हारी आंखें खुल जाएं, क्योंकि दिल अंधे हो चुके हैं, चाहे वो मुसलमान है या काफिर है, हम सबकी बात कर रहे हैं, नहीं है दिल की आंखें मौजूद। हाँ ये जाहिर की आंखें होते हुए समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे, हम कितने अक्लमंद और कितने ये हैं, वो तुम्हारी निगाह इबरत कहाँ गई, ये खंडरात तुम्हें कुछ नहीं बताते, ये वीरान महल कुछ नहीं बताते, ये बियाबाद कुएं कुछ नहीं बताते, ये म्यूजियम में पड़ी हुई ममीज कुछ नहीं बताती, ममीज पड़ी हुई है लोग आके देख रहे हैं, हाय देखो कैसे ये के बेबी को इंसान होते थे, इनके जिस्मों को ऐसे ममीफाई कर दिया गया, कुछ कुछ नहीं बताती है। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। सोचते नहीं ये लोग क्यों नहीं बच सके, जिनकी चीजें बच गई हैं वो खुद क्यों नहीं बचे, ये कौन है, इनके नाम क्या थे, सब मिट गए, इनकी नस्लें भी मिट गई, नहीं हम, मैंने और आपने तो मिटना नहीं है, ये तो पागल ही थे जो मिट गए हैं ना, उनको तो अकलें थी नहीं, हमने तो कहीं जाना नहीं, हम तो यहीं के लिए आए हैं और यहीं रहने के लिए। वही अस्तचिलूना का बिला साहब, वो जल्दी मांगते हैं आपसे अजाब। कहते थे मुशरिकीन मक्का कि अजाब ले आए ना अजाब, वो जो आप हर वक्त वादा करते रहते हैं हम आपको नहीं मानेंगे तो अजाब आ जाएगा, लेकर आए ना अजाब। अला युखलिफ अल्लाह वादहु, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हर किस नहीं करता। यानी जिस चीज का अल्लाह ने वादा फरमा दिया है कि अगर तुम ऐसा करोगे उसके ऊपर अजाब आएगा, तो ये कभी ना समझना कि ऐसे ही है तो बातें ही हैं, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होता। नहीं, अल्लाह के तमाम वादे सच्चे हैं, उसकी हर बात सच्ची है। कभी दिमाग के किसी कोने में भी ये बात ना आने दें, पता नहीं क़यामत ने आना है कि नहीं, पता नहीं ये होगा कि नहीं, नहीं आने दें कभी भी। सब हक है, जो अल्लाह की बात है वो सच्ची है। शैतान कभी कभी जहन में डालता है, उसको फौरन झटक दें। नहीं युखलिफ अल्लाह वादा हु, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं करता। क़यामत भी आएगी और अजाब और सजा और जजा के और जन्नत और जहन्नम और इसके जो सारे वादे हैं वो भी अल्लाह ताला पूरा करेगा। वइन्ना यौमन इंद रब्बिका का अल्फ़ सनतिन मिम्मा तअउदून, बेशक जो दिन एक अल्लाह के पास है ना वो तुम्हारे तो हजार सालों के बराबर है, हजार सालों की मानिंद है जो तुम गिनती करते हो। यानी तुम सोचते हो कि इतने दिन गुजर गए कोई अजाब तो आया नहीं, हालांकि तुम्हारे तो हजार साल भी जो है ना वो अल्लाह के पास एक दिन के बराबर है, बस एक दिन के बराबर। और फिर इसमें ये भी हमें पता चलता है कि यौमन का दूसरी तफसीर में ये आता है कि यौमन का जो लफ्ज है ये कयामत के दिन के बारे में है कि वो कयामत का दिन अल्लाह के पास एक दिन जो होगा ना वहां का, जब हशर में लोग खड़े होंगे, वो अल्फ़ीसना तुम्हारे हजार साल के बराबर होगा। और सूरह मारिज में 50,000 साल के बराबर का भी एक दिन अल्लाह का है, ये भी आया। तो अब आप ये देख लें कि फिर हजार साल और यहाँ हजार और वहां पे 50,000, इसमें कैसे मुताबकत होगी। तो मुफसरीन ने फरमाया कि असल में जो क़यामत का दिन है, जो हशर का दिन है, वो अल्लाह के हाँ का दिन है ना, वो हमारा ये इस तरह के दिन का नहीं आप कर सकते कि जैसे हमारा दिन होता है 24 घंटे का, इस तरह का वो हशर का दिन होगा। नहीं, वो दिन हजार साल के बराबर और कहीं 50,000 साल के बराबर कैसे होगा, किसी के लिए तो हजार साल के बराबर होगा, इसलिए क्योंकि अल्लाहु अकबर जो पैगंबर हैं वो भी जब बोल उठेंगे नफसी नफसी नफसी, अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह हमें बचा ले, तो सोचे वो दिन की दहशत क्या होगी, वो दिन कितना खौफनाक होगा और वो कितना लंबा लगेगा। जब कोई मुसीबत का वक्त होता है, आपको पता है जो कभी अगर आप बीमार हुए हो, रात जो होती है ना वो 7-8-9 घंटे की रात जो ऐसे लगती है सदियां गुजर गई, सुबह ही नहीं हो रही कि मैं डॉक्टर को कॉल करूं, एक एक मिनट ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं कितनी सेंचुरीज गुजर गई। जब इंसान को तकलीफ होती है ना, तो क़यामत से बड़ी तो तकलीफ कोई है ही नहीं। हशर का मैदान इतनी तकलीफ दे चीज होगी, इसीलिए तो लोग जाएंगे पैगंबरों के पास कि हमारी सिफारिश करें, अल्लाह फैसला शुरू कर दे, हमसे नहीं ये बर्दाश्त हो रहा यहाँ पे खड़ा होना, कि वो बात की बात है कौन जन्नत में जाए जहन्नम में जाए, अल्लाह फैसला तो कर, इतना मुश्किल दिन होगा। तो हजार साल के बराबर वो दिन, और बाज कहते हैं कि मुजरिमों के लिए तो वो लगेगा कि 50,000 साल का दिन है, ये भी आता है मुजरिमों को ये मुद्दत इतनी लंबी लगेगी। तो सोच लें कि उसकी फिर जन्नत भी वहां का भी, यानी जन्नत के दिन भी आप ये ना समझेंगे जितने हमारा एक दिन है उतना, यानी हमारे 50,000 साल या हमारे हजार साल गुजर जाए तो वो जन्नत का एक दिन है, सोचे। इसी तरह जहन्नुम का भी एक दिन। जो लोग कहते हैं ना, सुन लें वो जो कहते हैं कोई बात नहीं जहन्नुम से निकाल के तो एक दिन जन्नत में चले ही जाना, तो क्या हो गया, यानी जैसे कि इनके लिए ओके है कि चलो यहाँ पे मजे कर लूं, बस यहाँ के नहीं मैं मजे छोड़ सकती, वहां पे मैं रह लूंगी जहन्नुम के अंदर थोड़े दिन, थोड़े दिन ही है ना, फिर उसके बाद तो सुना है वो हदीस है कि भाई हर एक चला जाएगा जन्नत में जो तौहीद के ऊपर होगा। तो आखिर तो हम मुसलमान है तो चले तो जाएंगे ना। वो नादानों, तुम्हें पता है कि वहां का एक दिन कितना बड़ा है? एक दिन 1,000 साल जो तुम्हारे हैं, यहाँ पे तो तुमसे सब्र नहीं होता इस 50-60 साल 70 साल की जिंदगी में कि तुम गुनाह से दूर हो जाओ, तुम अल्लाह की फरमाबरदारी कर लो। तुम बताओ कि एक दिन भी वहां पे रहना पड़ गया जहन्नुम के अंदर, तो 1,000 साल रहना पड़ेगा। 1,000 साल, अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। वकअय्यिम मिन क़रियतिन, और कितनी बस्तियों में से, अमलैतु लहा, मैंने ढील दी उनको। अल्लाह ताला की आदत है, अल्लाह ताला की सुन्नत ही है कि वो फौरन नहीं पकड़ता। वो इस कदर गफूर रहीम है, उसका हिल्म इतना है, इतना उसका तहम्मुल है कि वो फौरन नहीं पकड़ता। वो ढील देता है, टाइम देता है, मोहलत देता है। वही अजालिमा इस हाल में कि वो जुल्म कर रही थी, वो जालिम थी बस्तियां, मैंने उनको ढील दी। सुम्मा अखज़ू, अब आप देखे सुम्मा का यहाँ पे प्लेसमेंट कि अल्लाह ने ढील दिया फौरन नहीं पकड़ लिया। सुम्मा का लफ्ज आया पकड़ने से पहले, सुम्मा यानी टाइम दिया उनको, बहुत टाइम दिया, बिल आखिर जाके वो नहीं हटे तो मैंने पकड़ लिया उनको। वही ले अल मसीर, मेरी ही तरफ पलटना है, लौटना है, मेरे पास ही आओगे। दुनिया में कितनी देर जुल्म और ज्यादतियां और गुमराहियां और गुनाह और इनके अंदर कितनी देर पड़े रहोगे? आखिर को अंजाम अल्लाह ही की तरफ है लौटना। चाहे दुनिया में 100 साल जी लो, 80 साल जी लो, या 20 साल जी लो, उसके बाद क्या? 100 साल वाले को भी उधर ही लौटना है, और 20 साल वाले को भी उसकी तरफ लौटना, और जो गुनाह करके जाए वो भी उसकी तरफ ही लौटेगा, और जो नेकियों में जिंदगी गुजार दे वो भी उसकी तरफ लौटेगा। उसकी तरफ लौटने से कोई फरार नहीं है, कोई कोई भाग नहीं सकता। हाँ, अल्लाह मोहलत देता है, मोहलत देता है कि तुम यहीं पे अपनी बख्शिश करवा लो। तो ये मोहलत इस लिहाज से तुम्हारे लिए एक, अगर नहीं कोई आता तो उसके लिए बुरी चीज है, और अगर कोई अल्लाह की तरफ आने वाला हो उसके लिए बड़ी अच्छी चीज है कि चलो अल्लाह ताला ने टाइम दिया, अभी भी मेरे पास टाइम है, अभी भी मैं आ सकता हूँ, अभी भी मैं पलट सकता हूँ, क्योंकि बिल आखिर तो पकड़े ही जाओगे। बेहतर नहीं है कि उस मोहलत का फायदा उठाते हुए वापिस आ जाओ? कुल कह दीजिए, ए नबी आप कह दें, या अय्युहन्नास, है लोगो, तमाम इंसानियत, हिंदू है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, एथीस्ट है, सबको कहा गया, इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हारी तरफ डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला, मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ कि देखो आखरत के अजाब ऐसे हैं, देखो आखरत में ये पूछोगी, देखो अल्लाह का पैगाम ये है, मुझे तुम्हें वार्निंग देनी है कि अगर ये पैगाम ना माना तो फिर ये है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है ना, सफा पहाड़ पे चढ़ के लोगों को जमा किया था और उनको पैगाम पहुंचाया था, बावाज़े बुलंद लोगों को पैगाम पहुंचाया था, तमाम इंसानियत के लिए ये पैगाम है। और इससे यहाँ पे पता चलता है सिर्फ नज़ीर क्यों क्यों बात आई, क्योंकि इस सूरत में आप देखेंगे टोन ही सारी इंतजार की है ज्यादातर, वरना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर भी हैं। फल्लतीन आमनु वामिलु सौलिहात, तो वो लोग जो ईमान लाएं और साले अमल करें, लहुम मगफिरतुन, तो उनके लिए है मगफिरत। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, यहां से पता चलती है मगफिरत किसके लिए होती है, जो कोई गुनाह करे, जिससे कोई कमी ज्यादती गुनाह हो जाए, इसका मतलब जो ईमान ला के साले अमल भी करते हैं उनसे भी कुछ गलतियां तो होंगी, कुछ गुनाह तो होंगे, गुनाह से पाक कोई नहीं है, लेकिन जब वो ईमान पे रहते हैं और मुसलसल साले अमल करते रहते हैं तब उनके लिए बख्शिश भी है। ऐसे ही लोगों के लिए बख्शिश है, लहूम मगफिरत, वो उनके लिए मगफिरत है। और अगर कोई कुछ भी ना करे, ना कोई तौबा करे, ना कोई साले अमल करे, ना कोई ईमान पे कायम रहे, तो उसके लिए क्या बख्शिश है? और कैसे, और क्या है, वह रिज़्क़ुन करीम, और रिज्क है इज्जत वाला, अल्लाह ताला उसको वो रिज्क वहां पे अता फरमाएंगे जो बड़ी इज्जत वाला रिज्क होगा। अल्लाह के हाँ जो जिस रिस्क को कहा गया कि जो इज्जत के साथ दिया जाएगा और इज्जत वाला होगा, वो उसके अंदर कितनी करामत होगी ये अंदाजा करें। आपको कोई मेहमान बुलाता है और मेहमान के तौर पे आप किसी के घर जाते हैं और वो आपको इकराम करता है और जो जितनी जिसकी हैसियत होती है वो उसके मुताबिक करता है। सोचिए तो इंसानों की तरफ से किया गया इकराम है, जो अल्लाह ताला इकराम करेगा वहां पे, जो ऑनर देगा और जो ऑनरेबल रिस्क देगा। और रिस्क के अंदर ना ये ना समझिएगा कि सिर्फ खाना पीना आता है, ये ना समझिएगा, रिस्क हर वो चीज है जिससे इंसान फायदा उठाता है, तो वो सब कुछ उसको मिलेगा, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो रहना सहना हो, कहीं मकान हो, या और जो उसकी जिस जिन चीजों से भी वो फायदा उठाता है, कोई रिश्ते हो, कोई और चीजें हो, सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, चाहे वो सवारियां हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो, ये सब चीजें रिस्क में है। वल्लज़ीना, और वो लोग, साउ फी आयातिना, जो मेहनत करते हैं हमारी आयात में, भाग दौड़ करते हैं हमारी आयात में, स्ट्रगल करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं हमारी आयात में। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद वो वर्क हार्ड करते हैं हिफ्ज़ करने में, अमल करने में, सीखने में, समझने में। नहीं, कोई और लोग भी हैं जो मेहनत करते हैं। वो क्या करने के लिए मेहनत करते हैं? मुआजिज़ीना, ताकि वो नीचा करें, नीचा दिखाएं अल्लाह की आयात को, ताकि वो आजिज कर दें, ताकि वो हरा दें। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा भी होता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी सारी मेहनत किस लिए? अल्लाह की आयतों में वो पढ़ रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं और बार बार उसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसे इसमें से ऐसे शोशे निकालें और लोगों को बताएं, देखा हमने तो कहा था ना, ये देखो कुरान के अंदर ये तो ये लिखा हुआ है, इस तरह देखा, ये तो कुरान तो ये कहता है, तुम्हारा कुरान तो ऐसे कहता है। लोगों में शकूक व शुभात पैदा करना, कन्फ्यूजन्स पैदा करना, लोगों को यानी मुतजलजल कर देना, उसमें भाग दौड़ करते हैं। अल्लाहु अकबर, कि इस्लाम को नीचा दिखाएं, ये देखो तुम्हारे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मारो लोगों को और कत्लो गारत करो, तुम्हारे तो ये लिखा हुआ है, तुम्हारे तो ये लिखा हुआ है कि ये इतनी इतनी शादियां कर लो, तुम्हारे तो ये लिखा हुआ है लौंडियों के साथ भी आप ताल्लुक कर सकते हैं, तुम्हारे तो ऐसे लिखी हुई है ये बातें, हाँ तुम्हारे तो ये लिखा हुआ है कि औरत की एक गवाही है और दो औरत की गवाहियां और मर्द की एक गवाही के बराबर है, तुम्हारे तो ये लिखा हुआ है कि औरत को आधा मिलेगा मर्द से हिस्सा विरासत में, ये देखो तो तुम्हारे तो किस तरह की बातें हैं। यानी तान करना, नीचा दिखाना, जलील करने की कोशिश करना, इस तरह की बातें निकाल निकाल के लाते हैं, ताकि किसी तरह बस कोई मुसलमानों को ना उनमें इतनी ऐसी बातें डाल दी जाए कि वो फिर अपने दीन पे भी ना सही से चल सके, उनको अपने दीन में ही डाउट्स होने लगे कि वाकई हमारा दीन पता नहीं कैसा है, वाकई पता नहीं बहुत ही बैकवर्ड है। देखो जरा इसके अंदर तो पर्दे की ऐसे लिखी हुई है, देखो इस तरह तो ऐसे लिखी, भाई इस तरह के शोशे निकाल के लाते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं, फिर तनकीद क्रिटिसाइज करते हैं, फिर इसको ना जैसे बिलिटल करते हैं, तहकीर करते हैं। अब वो जो सारी उनकी एफर्ट है वो इस चीज के अंदर लगी हुई है। उलाइका असहाबुल जहीम, ये लोग हैं जहीम के साथी, जहीम में रहने वाले, और जहीम जहन्नुम में सख्त तरीन गर्म जगह है, जहां पे बहुत अंधेरा भी और बहुत नीचे है, जहां मैंने आपको बताया ना शेर के घूरने को कहते हैं, जब शेर भूखा शेर घूरता है तो देखे कैसे घूरता है वो अपने शिकार पे, जहन्नुम इस तरह से उनकी ताक में बैठी हुई। अब इसके बाद ये जो आयत है अगली, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर बहस की जाती है और वही बात है कि कुछ मिस इंटरप्रेट करके भी उसको ऐसा बनाया जाता है कि देखा जी रसूल की तो ऐसे हो जाता है, शैतान उनके ख्यालों के अंदर आके कुछ और से और बनवा देता है बात को, हालांकि ऐसा नहीं है। जब हम इससे सही से अगर इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसी बातों का जवाब हमें आ जाएगा। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबीयिन, हमने आपसे पहला कोई रसूल ऐसा नहीं भेजा और ना कोई नबी भेजा है, इल्ला मगर इदा तमन्ना, जब वो तमन्ना करता है, अलका शैतानु फी उम्नियतिही, तो शैतान उसकी तमन्ना में कुछ डाल देता है। आप बाज ने ये कह दिया देखो जी कोई नबी या वो देखो उनके अंदर शैतान वसवसे डाल देता है और पता नहीं नबियों के काम के अंदर, या तो कुरान जब वही आती है पता नहीं उसके अंदर कोई डाल देता है या ऐसे करता है, ऐसी नहीं है बात। बल्कि इसका सही माना क्या है वो समझ लें कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी आपसे पहले जितने रसूल आए जितने नबी आए, असल में उनके मिशन का दुश्मन कौन था? शैतान। हमेशा शैतान रहा है ना उनके मिशन का दुश्मन। शैतान अब क्या करता है, जितने नबी और वो आए सबके साथ क्या हुआ, इल्ला इदा तमन्ना, जब जब उन्होंने कोई तमन्ना की, तमन्ना मतलब क्या, यानी एक उनकी भी एक ख्वाहिश होती थी ना नबियों की कि फलां ईमान ले आए, आए फलां तक दीन पहुंच जाए, छू सकता है फलां लेकर आएगा तो फिर उनके लिए इस दीन को ये तकवीयत मिलेगी, दीन स्ट्रांग हो इस बात से, तो वो ये तमन्ना करते थे कि ईमान ले आए। तो क्या होता था, अलक शैतानों फी उमनियत ही, शैतान उनकी तमन्ना में आके इल्का कर देता था, अपने वसवसे डाल देता था, उनकी जो तमन्ना होती थी शैतान उन लोगों के पास जाके उनके दिलों में वसवास डालता था। मिसाल के तौर पे अबू तालिब डेथ बेड पे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं चचा आप ईमान ले आए, आप एक दफा कलमा पढ़ लें तो मैं अल्लाह के सामने आपके लिए उज्जत पेश कर दूंगा। तो आप नबी की कितनी ख्वाहिश है कि मेरे चचा ही मान लें, कितनी तमन्ना है, लेकिन शैतान डालता है उनकी तमन्ना के अंदर रखने डालता है, वसवसे डालता है। तो अब शैतान जिसको वो बता रहे हैं उसके दिल दिमाग के अंदर बातें डालेगा, वसवसे डालेगा, उनको कंफ्यूज करेगा और उनको कहीं से कहीं और लगा देगा और उनको हटा देगा इस रास्ते से। और तमन्ना से मुराद अगर उम्मीद ली जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुर उम्मीद हो जाते, या पैगंबर दूसरे जिस मामले में पुर उम्मीद हो जाते कि अब बस ये जरूर मान लेगा, शैतान आके उसके अंदर इल्का कर देता, उसके अंदर वसवसे डाल देता। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को भी इतना समझाया, बाज जगह आता है 70 से ज्यादा दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अबू जहल को ही समझाते रहे, लेकिन देखा ऐसे लगता था कि इसको बात समझ आ गई लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही। तो उनकी जो तमन्ना होती थी उसके अंदर आके शैतान अपना इल्का डाल देता था, उनकी तमन्ना क्या कि ये ईमान ले आए, ईमान से उनको हटा देता था। ठीक है, फयनसखुल्लाहु मा युल्की शैतान, तो फिर मिटा देता है अल्लाह जो डालता है शैतान, शैतान जो वसवसे डालता है जो चीजें डालता है उनके इन्नी किसी आयत को समझने में किसी बात के अंदर जो शैतान रखने डालता अल्लाह ताला इसको दूर कर देता। किससे? उन लोगों से नहीं जिनके अंदर डालता था। अल्लाह ताला जो बददिली या जो अफसोस या जो दिल दुखता था पैगंबर का, अल्लाह ताला उस चीज को दूर कर देता था कि शैतान ने ऐसी चीजें डाली हैं कि जो जो आके इनके मिशन के अंदर रुकावट बन रही है, अल्लाह ताला उन चीजों को हटा देता था, अल्लाह उनको असर जायल कर देता था, पैगंबर उस चीज से निकल आते थे, असल पैगाम लोगों तक पहुंचता था। ठीक है, असल पैगाम जो था वो एज इट इज लोगों तक पहुंच जाता था, या जो उसके अंदर जो बातें शैतान ने डाली होती थी वो तो अल्लाह ताला दूर फरमा देता था। अब उन लोगों पे असर हो या नहीं हो वो अलग बात है, अल्लाह की तरफ से जो पैगाम होता था उसके लिए और मोहकम आयात अल्लाह ताला नाजिल फरमा देते थे और वो पैगाम अपनी जगह पे मजबूत रहता था। इसीलिए फरमाया सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयातिही, फिर मोहकम करता है अल्लाह अपनी आयात को, यानी जो अल्लाह ताला सुनवाना चाहता था, जो अल्लाह ताला बात फरमा रहा था उसको और पुख्ता कर देता था, और मजबूत कर देता था, क्लियर कर देता था। ठीक है, जो यानी जो बात शैतान ने डाली है वो खत्म हो जाती थी, हक वाजे हो जाता था। फिर भी अगर कुछ लोगों ने नहीं मानना वो अलग बात है, जरूरी नहीं उन लोगों में से कंफ्यूजन खत्म हो जाए, मगर अल्लाह ताला मैसेज में कोई कंफ्यूजन होती थी उसको दूर कर देता था, मैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाता था। वल्लाहु आलिमुन हकीम, अल्लाह ताला इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है। ये क्यों बात आई, इसलिए कि अल्लाह ताला इल्म रखता है कि शैतान ये काम करेगा, शैतान ये वसवास डालेगा, अल्लाह ताला फिर कैंसल कर देता, मनसूख कर देता था उन उन चीजों को जो वो ये डालता था, उनका असर जायल कर देता था, और उन आयात को और मजबूत, अल्लाह को इल्म है कि ये शैतान ही करेगा, फिर अल्लाह क्यों करने देता है शैतान को ऐसे, वो हकीम है, इसमें भी उसकी हिकमत है। और उसकी हिकमत क्या है, लिया जाला मा युल्की शैतानु फितनतन लिल्लदीना फी कुलूबिहिम मरदुन, ताकि वो बना दे इस चीज को जो शैतान डालता है, जो शैतान डालता उसको एक फितना बना दे, आजमाइश बना दे उन लोगों के लिए जिनके दिलों में मर्ज है। यानी कई लोग ऐसे हैं ना जिनके दिलों में मर्ज होता है, जिनके दिलों में निफाक है या जिनके दिलों में और बीमारी है, वो फिर ये बातें सुन के जो शैतान ने डाली है, ये इनके लिए आजमाइश है कि अब भी वो मानते हैं या नहीं मानते, अब भी ईमान लाएंगे या नहीं लाएंगे। शैतान तो हर दौर में अपनी कोशिश में लगा रहा है, शैतान आज भी कोशिशें कर रहा और उस वक्त भी करता था, मगर उसकी कोशिशें किन लोगों में असर दिखाती हैं, जिनके दिलों में पहले ही बीमारी होती है। वायरस होता है तो तभी इंसान, वायरस तो हवा में होता है, वो तो हर एक के लिए इक्वल है, लेकिन जिसमें खुद कमजोरी होती है वो वायरस को कैच करता है ना, जो खुद अंदर से कमजोर होता है, जिसमें स्टेमिना नहीं होता, जिसमें अपनी इम्यूनिटी नहीं होती, वो वायरस को कैच करता है ना। इसी तरह शैतान तो वसवसे डालेगा, वो तो हर उसकी काम ही यही है, वो तो पहले दिन से उसका ये था, लेकिन कौन लोग हैं जो उन वसवसों को कैच करते हैं, कौन लोग हैं जो उन वसवसों को लेकर, देखा ऐसा ही है ना, देखा फलां ये देखो ये तो आयत ऐसे ही कह रही, देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया, तो ये तो इसका मतलब ये निकलता है, तो ऐसे ये सारी चीजों को कौन इनको हवा देता है और अपने अंदर आने की जगह देता है, जिनके दिलों में पहले ही बीमारी होती है। ठीक है, जिनके दिलों में पहले बना, आप देखें आज कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लोग कुरान को तो हम मानते हैं लेकिन हदीस को हम नहीं मानते, ये क्या बात हुई, तो वो इतने अरसे बाद लिखी गई है, तो ऐसे है वो तो उसमें तो पता नहीं कितनी बाद में चेंजेस हो गई, वो तो कितने 100 साल बाद आई, वो तो ऐसे हो गया। ये शैतान डालता है, क्योंकि जब हदीस को इनकार कर देंगे तो शैतान को शैतान फिर ये डालता है कि इसको तुम ना मानो, तो जब जो हदीस का इनकार कर देगा फिर कुरान को समझ ही नहीं सकता, और जब कुरान को ही नहीं समझ सकेगा तो उसको क्या पता कि क्या कह रहा है कुरान, जो इंटरप्रिटेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो तो नहीं जान सकता। तो शैतान ऐसे टेस्ट डालता है, सॉरी अल्लाह ताला ने, जो शैतान ने इल्का किया इसको एक टेस्ट बना दिया उन लोगों के लिए जिनके दिलों में पहले ही मर्ज है। वल्कासियती कुलूबुहुम, और उनके दिल सख्त हो गए, उनके दिल ये जो जिन लोगों के अंदर ये मर्ज है और ज्यादा सख्ती आ जाती है, फिर उनमें वो ऐसी बातों को हवा देते हैं, फिर वो कहेंगे देखा पैगंबर के तो अपने चचा ने नहीं माना, अगर इस पैगाम में कुछ होता तो फिर वो ना मान लेते, लो नूह अलैहिस्सलाम के तो अपने बेटे ने नहीं माना, अगर वो इतनी बात सही होती तो उनके अपने घर में ना उनका बेटा मान लेता, तो ये उनके लिए फितना बन गया ना, कैसे कैसे शैतान जो वसवसे डालता है, अल्लाह ने इसलिए उसको पकड़ा नहीं है, इसमें उसकी हिकमत है, अल्लाह चाहे तो उसको पकड़ ले, अल्लाह ने, आप सोचते होंगे ना अल्लाह ने इसको क्यों छुट्टी दी हुई है कि वो ये डालता है, तो यही तो इम्तिहान है कि अब तुम समझ जाते हो कि ये शैतानी वसवसे है, या फिर तुम उन्हीं को लेके और उन्हीं की बेस के ऊपर तुम भी इनकार करने लगते हो। अन्नतालिमीन लफी शिकाकिम बईर, जो जालिम है ना वो शक होना क्या होता है, फट जाना मुखालफत में, वो फट के और दूर चले जाते हैं। वाली आलम लदीना उतुल इल्मा, और जो इल्म वाले हैं ना, ताकि उनको पता चल जाए, ये दो वजूहात बताई गई ना। हाँ सोचते हैं ना क्यों अल्लाह ताला शैतान को ऐसा करने देता है कि वो लोगों के अंदर आके ये बातें डालता है, और जो पैगंबर की तमन्ना होती है उस तमन्ना को पूरी नहीं होने देता, इसलिए नंबर वन ताकि फितना बन जाए उन लोगों के लिए जिनके अंदर मर्ज है, और ताकि ये आयत 54 वाली यालम अल्लदीना उतुल इल्म, ताकि इल्म वालों को जान जाए, जो किताब का इल्म रखते उनको फौरन पता चल जाएगा। अन्नहुल हक मिन रब्बे, ये तो अल्लाह की तरफ से हक है, यही तो अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है, और शैतान के वसवसों को वो रिजेक्ट कर देते, फयुमिनु बिही, तो वो ईमान ले आए साथ इसके, अल्लाह की किताब बताती है कि शैतान ऐसे वसवास डालता है, हम तो समझ गए कि ये शैतान का वसवसा है। इल्म वाले जान जाएं, किस चीज का इल्म, जिनको अल्लाह की किताब का इल्म है, वो समझ जाते हैं ये शैतानी अमल दखल है, तो उनका तो ईमान और मजबूत हो जाता है। फयुमिनु भी, तो वो ईमान ले आए साथ इसके, फतुखबीता लहू कुलूबुहुम, तो फिर आजी करें इसके लिए उनके दिल। जब अहले इल्म के पास ये बात आती है, उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाती है कि ये शैतानी चीजें हैं, वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं और ईमान ले आते हैं और उनके दिल झुक जाते हैं। मुस्तकीम, अल्लाह गाइड करता है ईमान वालों को सिराते मुस्तकीम की तरफ। हम सब सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहते हैं, मगर अगर चलना है तो करना क्या होगा, अपना ईमान मजबूत करना होगा, क्योंकि अल्लाह हिदायत देता है किनको, ईमान वालों को। ठीक है, ईमान वाले फिर इस झूठे प्रोपेगेंडा से मुतासिर नहीं होते, इस शैतानी बातों से मुतासिर नहीं होते, उनके दिल जमे रहते हैं कि नहीं अल्लाह की बात ये है और मैं उसके ऊपर ईमान रखता हूं और मैं उसके ऊपर यकीन के साथ मैं बस कायम हूं, यही हक है। वो फिर ऐसी बातों में नहीं आते जो इधर उधर फैलाई हुई है। हम तो रोज उठ के ना तो चल पड़ते, हाँ जी वहां पे ये था, वहां पे ये लिखा हुआ है, ऐसे क्यों उससे मुतासिर होते। जब कुरान आपने सीख लिया, पढ़ लिया, अब आपको समझ आने लगी, उन प्रोपोगंडा से क्यों मुतासिर होते। हक तो आपके सामने है, इल्म वाले तो पहचान जाते हैं, इल्म वाले तो फौरन झुक जाते हैं इसके आगे, वो नहीं ऐसी बातों में आते। फिर कोई कितना भी आपको वरगलाने की कोशिश करे, नहीं उसकी उसमें नहीं आना, लेकिन ये तभी होगा जब आपका अपना ईमान मजबूत होगा, तभी अल्लाह हिदायत देता है। वला यज़ालुल्लज़ीन कफ़रू फ़ी मिर्यतिम मिन्हु, और हमेशा इन काफरों के दिल जो कुफर के ऊपर ही है, जो एक ऐसा ग्रोह होगा जो हमेशा शक में रहेगा। काफरों में भी एक ऐसा ग्रोह होगा जो हमेशा डाउट करता रहेगा। किस चीज का डाउट? अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, इस चीज में इनकार करता रहेगा, चाहे उनको कितना भी बता दे। आप उनको जैसे किसी को सूरज दिखा दें और वो कहे नहीं नहीं मैं मानता ही नहीं हूँ ये सूरज है, आप उसका क्या कर सकते। इसी तरह ये हमेशा शकुको शुबात में पड़े रहेंगे। हत्ता तातिया हूँ सात बगतन, यहाँ तक कि आ जाए उनके पास घड़ी अचानक। अब ये कयामत की भी घड़ी हो सकती है, मौत भी हो सकती है उनकी। बस अब मौत आ जाएगी तो इन्होंने यानी इसी पे रहना जब तक मर ना जाए। अव यातिया हूँ अजाब यौम अकीम, यहाँ आ जाए उनके ऊपर अजाब यौम अकीम का, बांझ दिन का। और ये बांझ दिन कौन सा? जिस दिन कौमों के ऊपर अजाब आते हैं या फिर अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर अजाब आ जाएगा। इन्होंने मान के ही नहीं देना। हम कई दफा इंसान सोचता है कि इतनी दलाइल पेश किए, इतनी बातें की, क्यों नहीं टासे मास होते, क्या हो गया इनको, क्यों नहीं इनको बात समझ आती। तो कुछ लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो हमेशा कुफर पे ही रहेंगे चाहे कुछ भी कर लो। अल मुल्क यौम इदिल्लाह, उस दिन हकूमत, उस दिन किस दिन? क्यामत के दिन। हकूमत अल्लाह ही के लिए, तो हकूमत तो आज भी अल्लाह के लिए, फिर उस दिन क्यों कहा गया? इसलिए कि आज दुनिया के अंदर आपको छोटी छोटी कई हुकूमतें नजर आती हैं, अल्लाह की जात नजर नहीं आ रही, गैब में है वो, अब गैब के पर्दे में सारा काम हो रहा है, इसलिए इंसान के सामने जाहिरन कुछ नहीं है। या अल्लाह ने अपने तौर पे भी अपनी मर्जी से कुछ इंसानों को थोड़े बहुत इख्तियार दे दिए हैं, लेकिन कयामत के दिन सारे इख्तियारात और सारी हुकूमत सब से छीन के ले ली जाएगी। हर एक बेइख्तियार होगा, हर एक खाली हाथ होगा, हर एक की हुकूमत छिन चुकी होगी, इख्तदार सिर्फ अल्लाह के पास होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि उस दिन वो इख्तदार नजर आएगा, वो हुकूमत नजर आएगी, उसकी बादशाहत नजर आएगी जो आज गैब में है। यहकुम बैनहुम, वो फैसला करेगा उनके दरमियान। ये जितने भी मसले हो रहे हैं इन सब के फैसले हो जाएंगे, तो दो ग्रोह होंगे। फल्लदीना आमनू आमिलु सालिहाती फी जन्नातिन नईम, अल्लाह की तरफ से ये फैसला है इस किताब में कर दिया गया, जो ईमान ला के साले अमल करेंगे ये जो आज एक जगह नजर आ रहे हैं ना सारे, कि भाई ईमान लाए वो भी वैसे ही हैं, जो काफिर हैं वो भी वैसे ही हैं, वो सारे मिले जुले ही रह रहे हैं, एक जैसा ही रह रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में? वहां पे बहुत अच्छा फर्क नजर आ जाएगा, इसलिए कि जो ईमान और साले अमल करने वाले होंगे, फिर दोनों शराइत हैं, एक नहीं हो सकती। सिर्फ साले अमल करना, इससे भी नहीं जन्नत में जा सकते, और सिर्फ ईमान होना, ईमान का सबूत ही नहीं दिया साले अमल से, तो भी नहीं जा सकते। तो फी जन्नत नईम में कौन ने? दोनों शराइत है, तो वो वहां चले जाएंगे। वल्लदीना कफर हुआ कदा वो भी आया तीना बउलाए कल हम आदाब मोहिन, ये भी अल्लाह ताला फैसला फरमा चुका है, जो कुफर करेगा, जो हमारी आयात को झुटलाएगा, उनके लिए आजाब है रुसवा को। बहुत साल पहले एक जगह पे मैं गई, तो वहां पे ये खातून बहुत इस बात पे झगड़ने लगी कि क्यों ये कहा जाता है कि काफिर जो हैं वो जहन्नुम के अंदर जाएंगे, ये कितनी बुरी बात है, वो तो हमसे अच्छी है, वो तो इतने नेक काम करते हैं, वो तो इतनी चैरिटी करते हैं, वो तो इतनी इंसानी हमदर्दी के काम करते हैं, इतने अस्पताल बना दिए, इतने यतीम खाने बना दिए, तो फिर वो क्यों जाएंगे? यानी उनका मतलब था कि मुसलमानों को जाना चाहिए, तो इतने बुरे हैं कि बस इनको जाना चाहिए, उनको क्यों कहते हैं कि वो जाएंगे? ना फैसला मेरे हाथ में ना आपके, फैसला करने वाला वो रब्बे कायनात है जिसने इंसान को पैदा फरमाया, और उसका हर फैसला हक है। जब कुरान में अल्लाह ताला ने फैसला दे दिया कि जो कुफर करेगा और उसकी आयात को झुठलाएगा उसके लिए रुस्वा को नजाब है, तो फिर हम कैसे इतराज कर सकते, फिर हम कैसे तावीलें कर सकते, कुरान की बात का इनकार करते? और मैंने आपको बताया झुटलाने में क्या आता है, सिर्फ ये नहीं है झुटलाना कि मैं नहीं मानता, झुटलाने में है कि औरों को भी ना मानने को कहा जाए कि तुम भी ना मानो। वल्लदीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के रास्ते में, सुभान अल्लाह, मक्का में आराम से अपने घरों में बैठे हुए थे, आराम से रह रहे थे अपने खानदान में, कबाइल में, बड़ी सुकून की जिंदगी गुजर रही थी, बड़ी इज्जत थी, सारी अरब में सारी बड़ी इज्जत थी, काबा के मुतवल्ली हैं, इस जगह के रहने वाले हैं, इनके तो बड़ी शान होती थी। और देखो फिर क्या हुआ कि सब कुछ उलट पुलट हो गया, वहां पे रहते हुए सुकून नहीं है, टॉर्चर है, जुल्म है, हत्ता कि ये हाल हो गया कि खुद अपनी चॉइस से उस जगह को छोड़ना पड़ा, खुद अपनी चॉइस से रेफ्यूजी बन गए। रेफ्यूजी बनना तो आज भी आसान नहीं है, जब दुनिया में इतने वसाइल हैं, इतनी चीजें हैं, जरा जरा सी मिनट मिनट की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, हर एक तरह के हालात पता हैं, फोन पे सारी बातें और पिक्चर्स में आप सारी चीजें स्क्रीन पे देख लेते हैं। उस जमाने में तो यानी किसी और जगह पे जाके रहना और वहां पे बसना, और ये तो बहुत ही मुश्किल बात थी, जब कबायली जिंदगी होती थी, हर एक की प्रोटेक्शन उसके कबीले से होती थी, वो रेफ्यूजी बन गए बेसरो सामानी की हालत में, ना घर है, ना माल है, ना काम कारोबार है, ना अपना खानदान है, ना अपना कबीला है, कोई इतने रिश्तेदार नहीं है, सब कुछ छोड़ के रेफ्यूजी बने। और ये सोचें आप, थोड़ी देर के लिए इंसान ये सोचे कि किसका इतना हौसला हो सकता है कि अपना सब कुछ छोड़ के निकल पड़े। एक घर छोड़ना ही बड़ा मुश्किल होता है, घर छोड़ के इंसान कहीं जा रहा है ना, किसी दूसरी जगह जाके सेट होना कितना मुश्किल होता है। अब इन्होंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया, होमलेस हो गए बिल्कुल, और खाली हाथ है, और जहां पे गए हैं वहां पे किसी और पे डिपेंडेंट है, वो उनके घर में रहना है, 2 दिन किसी घर में इंसान रहता है तो फिर तीसरे दिन दिल चाहता है अपने घर चला जाए। अब ये इनको रहना है, यहीं पे रहना है बस, और फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट है खाने पीने में, उनके ऊपर डिपेंडेंट है माश में, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी छत भी अपनी नहीं है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है हर तरह से। अल्लाह अकबर। अब ये सोचें कि कहां से, यानी मैं और आप इसको, ये हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं हाय बेचारे, हाय ये अच्छी भली जिंदगी में रह रहे थे, कहाँ जाके पड़ गए। ओहो अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिएगा, अल्लाह नहीं कुर्बानी जाया करता। चले आगे देखते हैं, फिर सुम्मा कुतिलू, लो इससे भी बड़ी बात हो गई। अब बेचारे हिजरत करके वहां पहुंचे, लुटे फुटे ना, या वे देखो उनके कौन से सूटकेस थे जो उन्होंने भर भर के लाला के ऊंटों पे डाले और ऊंटों का काफिला चला दिया कि सारा सामान पैक करके पहले रखा। और वो तो कोई रात को निकलता था, कोई दिन को छुपचे छुपाते निकलते, अपनी जान बचाते निकलते थे, घर तो छोड़ आए थे सारा सामानों से भरे हुए, उन्होंने पीछे कब्जे कर लिए हुए थे, यानी इस तरह निकले थे। ऐसे भी नहीं कि बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी पैकिंग के साथ, बड़ी मतलब बुक कराई चीजें और शिप कराई चीजें और फिर पहुंचे, खाली हाथ है और पहुंच गए। और उसके आगे फिर क्या होगा? उसके आगे फिर कुतिलू, कत्ल किए गए। इसलिए क्योंकि जब जंगें हुई तो आप देखें, जंग का मौका आया, उसमें पहुंच गए। बदर में क्या था? अल्लाह अकबर, जो मुहाजरीन थे ना जंगे बदर में शामिल, उनके हाथों में कई, ये नहीं कि कोई तलवारें नीजे और वो हों तीर कमान, किसी के हाथ में डंडा और किसी के हाथ में कुछ भी नहीं, और कपड़े किसी के फटे पुराने कपड़े आधे इधर आधे इधर, और लागर कमजोर हुए पड़े हैं, कोई हाल नहीं है। ये लोग लड़ने के लिए आए थे, तो फिर कुतिलू, कत्ल कर दिए गए। अब माँ तू यहाँ वैसे ही मर गए, वो बिस्तर पे ही पड़े मर गए, कोई रास्ते में आते आते, कोई यहाँ पहुंच के, कोई बीमारी से, कोई कुछ। अब हिजरत कर ली है, उसके बाद यहाँ तो कत्ल हो गए या मर गए। ला यरज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्कन हसना, जरूर जरूर, अलबत्ता जरूर देगा उनको अल्लाह क्या रिज़्कन हसना, बड़ा अच्छा रिस्क, उम्दा रिस्क, इतनी नेमतें अल्लाह उनको देगा। दुनिया में अच्छा रिज़्क कोई कहे तो वो कितना अच्छा और कितना खूबसूरत होगा, अल्लाह फरमा दे रिज़्क हसना तो वो कैसा होगा। यानी दोनों के लिए रिस्क है, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया गया यानी शहीद हो गया, या शहीद नहीं हुआ खुद ही अपनी मौत मर गया, दोनों के लिए रिस्क का वादा है। यानी अल्लाह ने बिस्तर पे मरने वाले को भी शहीद के बराबर कर दिया, क्यों? अल्लाह के लिए हिजरत की ना, फी सबीलिल्लाह हिजरत की थी इसने। जो फी सबीलिल्लाह हिजरत करता है वो चाहे शहीद हो या बिस्तर पे, उसको मौत आए, बिस्तर पे मरने वाला भी शहीद के बराबर। अब खुद इमेजिन करें, आपके जहन के अंदर ऐसे किसी इंसान को लेकर आए कि जिसके साथ ये हो, पहले तो उसका घर छूटा, हर चीज छूटी, खानदान छूटा, उसके बाद फिर बेचारा कत्ल भी हो गया अल्लाह के रास्ते में, है? अब आप क्या कहेंगे? अगर तो ईमान के लेंस के साथ देखेंगे ना तो कहेंगे बड़ा खुश नसीब है, खुश नसीब नजर आएगा आपको। और अगर ईमान का लेंस नहीं लगाया हुआ आपने तो कहेंगे हाय बेचारा कितना बदकिस्मत था, हाय प्लेन क्रैश हो गया, उसमें गिर गया, मर गया आग के अंदर, हाय 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 बेचारे का क्या हाल हो गया। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जब ईमान के लेंस से देखा जाए तो फिर ही नजर आता है कि कितने बुलंद दर्जे अल्लाह ता फरमाता है, जो उसके रास्ते में निकलते हैं, जो उसके रास्ते में हिजरत करते हैं, जो उसके रास्ते में मर जाते हैं, उनके दर्जे क्या है। ये जब ईमान का लेंस ना हो ना तो तब नहीं नजर आता। जब आप ईमान की ऐनक लगा के देखेंगे, उन ग्लासेस के थ्रू देखेंगे, तब नजर आएगा कि वाह ये कितना खुशकिस्मत है, इसको तो सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। ये तभी आप कह सकते हैं जब ईमान होता है, हाँ जी ना, यही फर्क होता है। लोग दो तरह की बातें क्यों कर रहे होते हैं ऐसे लोगों के बारे में, कोई कहते हैं वाह कितनी खुशकिस्मती, और कोई कहते हैं हाय बेचारा बदकिस्मत। फर्क ये नहीं है, वो ये नहीं है कि वो खुशकिस्मत भी और बदकिस्मत भी है, ये नहीं है। बात ये है कि आप किस लेंस को लगा के देख रहे हैं, आपको नजर क्या आ रहा है। जिस कलर का लेंस लगाया होगा वो ही कलर नजर आता है ना बाहर। आप रेड कलर का लेंस लगाने रेड नजर आएगा, आप काले लगाने सब चीज अंधेरी अंधेरी नजर आएगी। अब मुझे बताएं जिसने ईमान का लेंस लगाया हो उसको क्या नजर आएगा? उसको नजर आता है कि ये कामयाबी पा गए, ये बेचारे नहीं है, ये तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं। देखें मुसअब बिन उमैर को, मुसअब बिन उमैर इतने खूबसूरत थे, माँ बाप के लाडले बेटे थे, नए नए ड्रेसेस रोज पहनते थे, नई नई पोशाकें, और बात करने में इतनी मिठास होती थी, जो सुनता था ना आशाश उठता था। और इतने जहीन थे, हर मजलिस की जान होते थे, उनके साथ ही उनका इंतजार करते थे कि जब वो मजलिस में बैठ जाता है तो सब खामोशी से उसकी तरफ देखते हैं, उसकी सुनते हैं और सर धुनते हैं, और जबरदस्त गुफ्तगू करते थे। किसी से डरते नहीं थे सिवाय अपनी माँ के, उनसे बड़ा डरते थे, आगे उनके बात नहीं कर सकते थे। तो जब ईमान लेकर आए, इस्लाम लेकर आए, तो माँ और करीबी रिश्तेदार और कौम के बड़े बड़े इनके कबीले के जमा हो गए, और वालदा ने थप्पड़ खींच के मारा, और करीब था कि अपने बेटे को क्या कर देती, जान से मार देती, कि वो अशराफ वगैरह थे जो उन्होंने, बड़े लोग थे, उन्होंने मना किया, हम इसको समझा बुझा देंगे, कोई बात नहीं, गुस्सा ना करो, समझ जाएगा, बच्चा है। लेकिन वो समझे नहीं। वो कुरान अपनी माँ को सुनाते हैं और माँ को समझाते हैं कि ईमान ले आ, और माँ नहीं मान रही, माँ उल्टा कह रही है कि मैं तुझे तुझसे सारी ये चीजें ले लूंगी वापस, और ऐसे कर दूंगी, बड़ी डरा धमका रही है, कभी समझाती है, कभी लालच देती है, ये कुछ बात सुनने को तैयार ही नहीं। और जो हिस्ट्री में लिखा गया ना, ये कि ये इतनी एक्सपेंसिव खुशबू लगाते थे ना, परफ्यूम इतना एक्सपेंसिव लगाते थे, जहां से गुजरते थे लोगों को पता चल जाता था मुसअब बिन उमैर गुजरा है, इतने यानी लाडले भी थे। लेकिन जब माँ को कहा ना कि आप, मैं आपका हमदर्द हूँ, खैर खा हूँ, बस आप एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दें, तो उसने कहा था सितारों की कसम, जब तक मेरी अकल और होश सलामत है, मैं तुम्हारे मजहब में कभी दाखिल नहीं होंगी। और सोचें बेटे को ये सुन के उन बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे और आपने इनको फिर मदीना रवाना कर दिया था। एक दफा सहाबा कराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे कि मुसअब आ गए, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा तो उनके पोशाक में, उनके कपड़ों में टाट लगे हुए थे और मुश्किल से सतर छुपा हुआ था। कहाँ वो खुश लिबास नौजवान, एक्सपेंसिव तरीन परफ्यूम लगाने वाला, और कहाँ ये हालत। सहाबा की आहें निकल गई थी, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ शफकत से देखा और फरमाया, मैंने मुसअब को इस्लाम लाने से पहले भी देखा है तो पूरे मक्के में इससे ज्यादा माँ बाप का लाडला कोई नहीं था। सारी सहूलतें, सारी आसाइशें इसको मुयस्सर थी, मगर उसने ये सारी नेमतें अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान कर दी। जब मक्का में थे ना, इनकी माँ ने इनको कैद भी करने की कोशिश की थी, लेकिन ये किसी तरह काबू नहीं आए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पहला जो इस्लाम का सफीर इनको बना के भेजा था मदीना, यहां जाके लोगों को दीन सिखाए। तो ये बदर में भी शामिल हुए थे, बदर में भी झंडा इनके हाथ में था, और ओहद में भी शामिल हुए थे, ओहद में भी इनको झंडा मिला था। और इनकी, इनको बड़ा जिम्मेदारी का एहसास था कि मेरे, मुझे झंडा दिया गया। तो जब मुसलमान ओहद में तितर बितर हो गए थे तो साबित कदमी से रहे। इब्ने कैमिया ले से आगे बढ़ा और उसने इनके हाथ पे जोर का वार किया था, तो उन्होंने झंडा अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। अब उसने बाएं हाथ पे तलवार का वार किया तो बाएं बाजू भी कट गया, और ये आयत तिलावत फरमाते जा रहे थे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल। उनके दोनों बाजू कट गए थे, तो कटे हुए बाजुओं के जो बाकी हिस्से थे ना, उससे झंडे को सहारा देके अपने सीने से लगाया हुआ था। अब की जब दफा जब उसने नेजे से हमला किया तो आपकी जुबान पे मुसलसल कुरान था, और जो नेजा मारा तो आपके सीने से पार हो गया और जमीन पे गिर गए और शहीद हो गए। शहादत के बाद इनकी उम्र 40 साल थी। झंडा तो अजत अली ने फिर आगे बढ़ के पकड़ लिया था। ये मार्का जब खत्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ शुहदा को अलविदा कर रहे थे, तो उनमें ये मुसब बिन उमैर भी थे और हजरत खब्बाब। बहुत बाद में इनको याद करते थे तो फरमाते थे, हम लोगों ने अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह और रसूल अल्लाह के रसूल के साथ हिजरत की, उसका अजर और बदला यकीनन अल्लाह से मिलेगा। हम में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हिजरत का बदला दुनिया में ही पाया और कुछ ऐसे थे जिनको दुनिया में कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, दुनियावी तौर पे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। उनमें मुसब बिन उमैर थे। यानी जो मुसलमान जिंदा रहे वो तो बाद में फतुहात उन्होंने देखी, उनके हालात अच्छे हो गए, लेकिन जो कुछ ऐसे थे जो दुनिया से इस हाल में चले गए, देखे हिजरत की, उसके बाद बदर देखी, ओहद देखी, उससे पहले भी मक्का में कौन से अच्छे हालात थे, माँ बाप ने सब कुछ वापस ले लिया था बिल्कुल, यानी ऐसे कपड़ों में फटे पुराने में आ गए थे, और हबशा भी इन्होंने हिजरत की थी फिर वापस आ गए थे। तो यानी इस कदर उन्होंने मुश्किल हालात देखे, और कभी इस्लाम के उरूज का जमाना इन्होंने नहीं देखा, उससे पहले ही शहीद हो गए थे, तो थ्रू आउट इन्होंने मुश्किल ही देखी। तो फरमाते हैं जब इनको दफन करने लगे तो कफन नहीं मिल रहा था, एक छोटी सी चादर थी जिसको सर पे डालते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव पे डालते थे तो सर मुबारक नंगा हो जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर दी गई, आप तशरीफ लाए, अपने साथी को इस तरह से देखा तो आंखों से आंसू रवा हो गए। आपने फरमाया मोमिनों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रब के साथ वादे को सच्चा कर दिखाया। मुसब, मैंने तुम्हें मक्के में देखा था, तुमसे ज्यादा अच्छा लिबास और तुमसे ज्यादा खूबसूरत बाल किसी के नहीं थे, और इस वक्त मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम बिखरे हुए बालों के साथ एक मामूली चादर में लिपटे हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शुहदा की तरफ एक नजर डाली और फरमाया, अल्लाह का रसूल गवाही देता है कि तुम कयामत वाले दिन शुहदा में उठाए जाओगे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने हिजरत भी की और फिर अल्लाह के रास्ते में कत्ल भी हो गए। और ऐसे लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि अल्लाह ताला इनको रिस्क देगा, रिस्क हसना, इन्ना अल्लाह लहू खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह ही है जो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। ला युदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौनहु, अल्बत्ता वो जरूर दाखिल करेगा उनको। अब इसमें भी देखें नून मुशद्दद भी, और ये अल्लाह ताला इनको जरूर दाखिल करेगा। कहाँ दाखिल होने की जगह, जो इनको राजी कर दे, यार दौना हो, वो इससे राजी हो जाएंगे। किससे राजी हो जाएंगे, या तो हु की जमीर इस तरफ भी जा रही है, उस मुदखल से दाखिल राजी हो जाएंगे, जिस एंट्रेंस से इनको दाखिल किया जाएगा। ये इतने खुश होंगे जन्नत के गेट्स देख के, इतने खुश होंगे कि बस इनको लगेगा बस हम तो यहीं रह जाए, हमें तो सारी जन्नत मिल गई, जन्नत के गेट इतने हसीन है, उससे ही इतनी उनको खुशी होगी, इतने वो राजी हो जाएंगे। और दूसरा इसका माना ये भी हो सकता है कि यार दौना हो, उससे राजी हो जाएंगे, यानी अल्लाह ताला से ही वो लोग राजी हो जाएंगे। देखें कि अल्लाह ताला उनको फरमाया कि वो उनको दाखिल करेगा, दाखिल होने की जगह ऐसी कि वो राजी होंगे उससे, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो मुझसे राजी हो जाएंगे, मैं उनको ऐसी जगह दाखिल करूंगा, यानी उस जन्नत में दाखिल करूंगा कि वो मुझसे राजी हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सुभान अल्लाह, जिस अल्लाह को राजी करने के लिए इंसान पूरी जिंदगी कोशिश करता रहता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, वो रब फरमा रहा है कि मैं इनको राजी कर दूंगा। यानी अब रब राजी करने लगा है इन बंदों को, जो बंदे अल्लाह को राजी करते रहे दुनिया में, उनका जीना मरना अल्लाह को राजी करने के लिए था, अब अल्लाह ताला उनको राजी कर रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं इनको राजी कर दूंगा, सुभान अल्लाह। वह इन अल्लाह ला अलीम हलीम, और बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला भी है और हिल्म वाला भी है। अल्लाह अलीम उनके मामले में है जिनको सताया जा रहा है, अल्लाह जानता है कि जो ये सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस चीज से ये गुजर रहे हैं, और उसका हिल्म किन के लिए है कि अल्लाह ताला का हिल्म इतना ज्यादा है, वो तहम्मुल के साथ चल रहा है, उसने ढील दी हुई, उसने टाइम दिया हुआ। अब मुसलमान इस चीज में, कई मुसलमान बेसब्रे हो जाते थे कि कब अल्लाह की तरफ से इन लोगों के लिए सजा आएगी, कब अल्लाह इनको पकड़ेगा। तो अल्लाह ताला हलीम है, इसलिए नहीं पकड़ा अभी तक वो तहम्मुल से। ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ, ये बात, और जो कोई भी बदला ले, माने जिसके जो सजा दी गई, जो उसके साथ यानी किया गया, मा उकीबा जो उसके साथ किया गया उसको, यानी अगर कोई इंसान बदला लेता है जितना जुल्म उसके ऊपर किया गया बस उतना ही, तो ये जायज है। जितनी तुम पे ज्यादती की गई, वैसे तो माफ कर देना ज्यादा पसंदीदा है, मगर इस्लाम इसकी भी इजाजत देता है, जितनी ज्यादती गई बस उतना ही बदला ली, यानी कि उससे ज्यादा। सुम्मा बोगी अलैहि, फिर ज्यादती की गई इस पर, लयंसुरन्नहुल्लाह, अलबत्ता जरूर मदद करेगा उसकी अल्लाह। अगर मजलूम था और तो फिर उसने अब जालिम से अपना बदला ले लिया, लेकिन अगर मजलूम हद से भी बढ़ जाए बदला लेने में, तो अब वो जालिम बन चुका है। तुम बूगी या फिर ज्यादती की गई, अगर यानी बदला लेने में अगर ज्यादती की गई, तो फिर अल्लाह की मदद आएगी उसके साथ जो सताया गया, जिसको जिसके साथ ज्यादती की गई। ईंट का जवाब पत्थर से देने का कोई जवाज नहीं है, या इसने मुझे एक कहा तो मैं 10 ना जब तक सुना दूंगी तो फिर नहीं मैं चैन से बैठूंगी, ये नहीं हो सकता। फिर वो जालिम बन गया जो पहले मजलूम था। इस चीज से बचना चाहिए, बदला लेते वक्त सिर्फ उतनी इजाजत है जितना जुल्म किया गया है। फिर दूसरा भी इसका माना है, दूसरा इसका माना यह है कि अगर एक इंसान के ऊपर जुल्म होता है और वो उसके ऊपर बदला लेता है, यानी मजलूम अपना बदला लेता है, तो जालिम अब इस बात में गुस्से में आ जाता है, मुझसे बदला इसने लिया तो लिया क्यों, अब वो और जुल्म इसके ऊपर करता है, तो अल्लाह की मदद इस मजलूम के साथ होगी। फिर समझ आ गई बात, दोनों बातें समझ आ गई कि हु बुगी अलैहि, इस पर अगर ज्यादती की जाती है तो इसमें दोनों माने आ जाते हैं, यानी जो पहले मजलूम था इसी के ऊपर वो जालिम दोबारा और ज्यादती करता है, जैसे कि मुसलमान है। अब मुसलमान अगर उतना जिनके जितना उनके ऊपर जुल्म किया गया उसका बदला कुफार से लेते हैं, तो कुफार अब क्यों हमसे बदला क्यों लिया, अब वो और ज्यादा इनको मारते हैं, तो फिर अल्लाह मजलूम के साथ है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि मजलूम जो है वो जालिम से बदला लेने में हद से बढ़ जाए, तो फिर भी अल्लाह ताला की मदद फिर उसके साथ हो जाती है जो पहले जालिम था, अब वो ही मजलूम बन गया क्योंकि इससे हद से ज्यादा ज्यादती की जा रही है। ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ, ये इस बात को, ये बात है कि अन्न अल्लाह यूलिजु लैला फिन नहारी, अल्लाह ताला दाखिल करता है रात को दिन में और दिन को रात में। अब इस बात की यहाँ पे क्या बात बनती है कि दिन और रात को दाखिल करने का यहाँ पे क्या सेंस बनती है, वो ये कि देखें अल्लाह मदद करेगा, वो मदद पर कादिर है, और उसकी कुदरत कितनी है, उसकी कुदरत को पहचानो, वो रब है जो रात और दिन को बदलने पर कादिर है, तो वो क्या किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी जालिम को रोक नहीं सकता, किसी की पकड़ नहीं कर सकता। दूसरी इसके अंदर बात क्या है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया कि दिन और रात एक जैसे नहीं रहते, कभी की दिन लंबे तो कभी की रातें लंबी, कभी दिन है अच्छे हालात हैं तो वो भी बदल जाएंगे, और अगर रात है तो वो अंधेरी होती है, बुरे हालात हैं तो वो भी एक दिन दिन में बदल जाएंगे। अगर कुरैश आज जुल्म कर रहे हैं तो उनके जुल्म की जो उनको ढील मिली हुई है, जो उनके ऊपर इस वक्त दिन है, तो वो भी रात में बदल जाना है जल्दी, और तुम्हारा भी दिन आएगा एक दिन, तुम्हारा भी दिन आएगा, तुम भी एक दिन गालिब होगे, मगर फिर तुम ये ना समझना कि ये भी हमेशा ही रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। अल्लाह समीउन बसीर, तुम्हारे हालात से वो बेखबर नहीं है, वो सुनने वाला भी और देखने वाला भी। अदालिक भी अल्लाह हुवल हक, इसलिए बेशक अल्लाह ताला हक है, वह अन्नमा यदाउन मिन दूनी हुवल बातिल, और जिसको भी पुकारा जाता है अल्लाह के सिवा, चाहे कोई बुत हो चाहे कोई और हो, हर एक बातिल है जिसको अल्लाह के सिवा पुकारा जाए। वह अल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, और बेशक अल्लाह ताला वही बुलंद भी है और बहुत बड़ा है। यहाँ पे अल्लाह का सहारा छोड़ के जो गैर अल्लाह का सहारा लेते उनको सही बता दिया गया कि ये सब बातिल है, ये सब बातिल हैं, कोई भी हक नहीं है। हक वही है जो एक अल्लाह है, वही हक है और वही बुलंद है और बड़ा है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير